आयत नंबर 79 तक सूरह नहल आज देखेंगे। वल्लाहु फद्दला बादकुम अला बादिन फिर रिज्क। अल्लाह ताला ही है जिसने फजीलत दी बाज को बाज में रिज्क में। रिज्क क्या चीज होती है? मैंने आपको बताया था जो भी नियमतें अल्लाह ताला की तरफ से वो रिज्क है। माल तो है ही रिज्क, ठीक है वो तो है ही रिज्क। खाना पीने को भी हम रिज्क कहते हैं, वो भी रिज्क ही है। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो सेहत है वो भी रिस्क है, जवानी रिस्क है, जिंदगी वक्त जो आपको मिला हुआ है, जो आपके पास सलाहियतें हैं वो सब रिस्क है। तो अल्लाह ताला बास को बास में फजीलत देता है। देखिए ना, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब, किसी को सेहतमंद, किसी को बीमार, किसी का बहुत ब्रिलियंट बना दिया। कोई कम अकल है, कोई बहुत हसीन है, कोई नहीं है इतना। तो बास को बास में फजीलत दे दी रिस्क में। किसी के पास औलाद है, किसी के पास नहीं है। फिर उससे एक मिसाल दी गई। एक तो पहले ये बात समझ आ गई कि इस दुनिया के अंदर ये जो ऊपर नीचे है ना, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसको गैर फितरी तरीके से बराबर करने की जरूरत नहीं है कि कोई कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है उसमें वो कहते सारे बराबर हो जाएं। नहीं, इस्लाम तो ये नहीं कहता कि सारे इक्वल बिल्कुल हो जाएं। ये गैर फितरी तरीका है। हाँ, इस्लाम कहता है कि सबको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए, ये अपनी अपलिफ्ट करें, चाहे वो कोई गुलाम नौकर ही क्यों ना। आप देखिए इन मुल्कों के अंदर, मैं नाम नहीं देती, एक पहले कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ था और उसने कहा कि मेरी माँ जो थी वो मेड थी, घरों में सफाइयां करती थी। लेकिन आज देखिए वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ, जीता नहीं, लेकिन आप देखिए एक बंदा कहां से कहां तक पहुंच गया। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि गैर फितरी तरीका हो, जिसके पास माल है उसे माल छीन के कहें सारों को बराबर करना, इससे सबको इक्वल वो माल डिवाइड कर दिया जाए और सबको एक ही सतह पे ला दिया जाए। सबके एक जैसे घर हैं, सबके एक जैसे काम हैं, सबके एक जैसी चीजें हैं, सबका एक जैसा स्टेटस है जी, इसलिए क्योंकि सबको बराबर करना है। ऐसा नहीं है इस्लाम के अंदर। क्या कहीं अमीर भी होगा, कोई गरीब भी होगा, अल्लाह ताला ने ये फजीलतें बास को बास के ऊपर इसलिए दी है ताकि निजाम चल सके। हाँ, ये जरूर कहा गया अपने माशरे में कमजोरों का ख्याल रखो। जाते जाते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी कि गुलामों के बारे में अल्लाह से डरना, अपने गुलामों का ख्याल करना, ठीक है। तो अब एक मिसाल भी दी गई, ये बात समझ आ गई है ना, फजीलत बास को बास के पर दी। अब एक मिसाल दी गई, फमल्लदीना फुद्दिलु बिरौदी रिज़्क़हुम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फी सवा। क्या कभी ऐसा होता है, ऐसा कभी आपने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो फजीलत दिए गए हैं वो अपने रिस्क को लौटा दें उनकी तरफ जिनके वो मालिक हैं, उनके दाएं हाथ यानी उनके गुलामों की तरफ। मा मलकत अयमानुहुम को मतलब गुलाम। फहुम फी सवा, तो वो एक जैसे हो जाए, एक जैसे बराबर हो जाए। अब देखें ना कि यानी ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो अमीर है, मिसाल के तौर पर किसी पास $1 million है, तो वो हाफ अ मिलियन अपने गुलाम को दे दे, नौकर भी नहीं गुलाम को, जो कोई इख्तियार नहीं रखता, जो बिल्कुल यानी उसके अंडर है, उसको हाफ दे दे और हाफ खुद रख ले। कभी ऐसा दुनिया में आपने देखा? कभी बताएं कोई ऐसी मिसाल देखी है? नहीं, कभी नहीं देखी। तो फिर कि यानी बिल्कुल बराबर करते, तो फिर अल्लाह ताला के लिए क्यों ऐसी मिसाल देते हो? कैसे? इससे समझाई गई तौहीद। वो चीजें जो अपने लिए तो कभी आप पसंद नहीं करते। कौन से लोग हैं जो अपने नौकरों को भी जायदादों में कहेंगे जी मेरे दो घर हैं, एक घर में तुझे दे देता हूँ, एक खुद रख लेता हूँ, तो हम दोनों बराबर हो जाते हैं। कौन ऐसे करता है? अपने लिए तो तुम ऐसा पसंद नहीं करते और अल्लाह के लिए पसंद करते हो कि तुम अपने जैसों के साथ भी नहीं बांटते, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक जो किसी तरह भी खालिक के बराबर नहीं हो सकती, तुम तो फिर भी इंसान हो ना, दोनों, तुम्हारा गुलाम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, फिर भी तुम उसको अपने बराबर नहीं लाते और तुम अल्लाह के गुलामों को, उसकी मखलूक को उसके बराबर ले जाते, उसके बराबर के इख्तियार दे देते कि ये भी देता है, ये भी अता करता है, ये भी रिस्क मुझे पहुंचाता है, यहां से भी मुझे औलाद मिलती है। तुम क्यों नहीं अपने नौकरों को बराबर कर लेते? उनको दे दो ना आधा माल और आधा खुद ले लो और बराबर हो जाओ, क्यों नहीं करते? लेकिन अल्लाह के लिए वो काम तो करते हो। खालिक और मखलूक कैसे बराबर हो सकते हैं, उनका तो कोई मैच ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं, कहाँ वो खालिक कहाँ ही मखलूक। तो तुम उठा के उनको वो इख्तियारात का मालिक समझ लेते हो कि ये इसको ये भी इख्तियार है, ये भी इख्तियार है, शिफा यहाँ से मिलेगी, उसके दर से मिलेगी, वो साईं बाबा, वो फलां, वो गुरु, वो गौसे पाक, वो दाता, वो फलां, कितने नाम रख लिए तुमने, जबकि ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है, जिसको चाहे अता करे, जिससे चाहे वापस ले। तो तेरे मुल्क का मंतशा हो तो आइज मंतशा हो तो दिल मंतशा हो भी यदि कल खाई इन्ना कला खुली शहीन का दी। तो तुमने उठा उठा के किसी को कभी किसी को दे दी, कोई किसी को चीज दे दी। हम तो ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं बनाते अपने नौकर का और अपना ज्वाइंट अकाउंट बना ले, आओ जी तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ। फिर देख लो वो सारी बातें ना, पहले भी हमने बात की थी ना पिछले सबक में, कि अपने लिए वो बातें पसंद नहीं करते, वो अल्लाह के लिए करते। मसलन औलाद है, अपने लिए कोई पसंद नहीं करेगा कि कोई किसी की औलाद को आपके साथ डाल दे, कि कोई कह दे कि ये इसका बेटा है, नहीं करेगा कोई पसंद, कि हराम की मतलब उसके फील होगा कि ये मेरे ऊपर हराम का इल्जाम लगा दिया। और अल्लाह ताला के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि उसने औलाद ली थी, जबकि वो उसकी औलाद नहीं है। आफा बी नियामत इल्लाही, क्या भला अल्लाह की नेमत से का यह जहादून वो इनकार करते, अल्लाह की नेमत का इनकार करते, यानी अल्लाह ताला की नेमत का ताल्लुक इससे कैसे है कि शिर्क करके इंसान असल में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को किसी और के नाम मंसूब कर देता, कभी बुतों के नामों पे, कभी और अल्लाह की किसी मखलूक के नाम पे उनके साथ मंसूब करते हैं। रिस्क अल्लाह ने दिया है और कहते हैं जी फलां ने हमें रिस्क दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक उर्स होता था हमारे शहर में, उनको कहते थे दाता साहब, दाता के नाम भी गलत है, हजरत अली हजवेरी कहना चाहिए उनका जो असल नाम है। तो उस दिन दूध नहीं मिलता था पूरे शहर में, क्योंकि सारे दूध वाले जो वहां पे जाके दूध देते थे लोगों को, क्योंकि वो कहते थे हमारी भैंसें दूध देना बंद कर देंगी अगर हमने उर्स पे जाके ना दिया, सूख जाएगा इनका दूध। यानी तुम सोचते हो कि इनके उससे आता है हमें दूध, इनके उससे हमें रिस्क मिलता है। इस तरह और बेशुमार बातें, लोग अपने बच्चों के नाम पीरा दित्ता रख लेते हैं, पीरों ने दिया हुआ, गुलाम रसूल रखते थे, रसूल का गुलाम अब्दुल्ला अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नाम है, अब्दुर्रहमान सबसे ज्यादा पसंद है, और ये गुलाम किसी और के बन जाते हैं। तो नेमतों से फायदा उठाते हैं, वो नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं, दिन और रात फायदा उठाते हैं, लेकिन शुक्र किसी और का अदा करते हैं, झुकते किसी और के आगे हैं, नेमत को किसी और के नाम लगाते हैं। देखिए नाशुक्री वाली जो जिंदगी है ना, वो नेमतों के इनकार वाली जिंदगी है। नेमत का एतराफ पता है क्या है? शुक्र। और नेमत का इनकार नाशुक्री है। वल्लाहु जाला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह ताला ने ही बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने नफ्सों से जोड़े। अजवाज का मतलब वैसे तो जोड़े होता है, लेकिन यहां पे बीवियां होगा, इसलिए कि लकुम है ना, लकुम तुम्हारे लिए मुजक्कर का है, तुम्हारे लिए इसका मतलब बीवियां बनाई। वह जाल लकुम मिन अजवाजिकुम, और बनाई तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में से बनी न व हफादतन, बेटे और पोते। मिन अनफुसिकुम पहले तो आया तुम्हारे अपने नफ्सों में से, यानी तुम्हारी जैसी तुम्हारी जिन्स की, ऐसी नहीं कि इंसान है मर्द और जिन औरतों से शादी कर रहा, या जानवरों में किसी से शादी कर रहा और उससे अब उसके आगे नस्ल बन रही, ऐसा नहीं, बल्कि जो उसकी आगे नस्ल चलती है उसकी जैसे जौत से चलती है, उसकी यानी जिन्स के जौत से चलती है, जिससे फैमिली सिस्टम आगे बढ़ता है। और अजवाज जो है ना वो पेयर को भी कहते हैं, उसका पेयर है, उसका स्पाउस, उसकी बीवी, यहां पे खास तौर पे तुम्हारी नौ में से ही बनाई, इंसानों में से ही बनाई कि इंसान अपने जो ये जिंसी जज्बात है वो उनकी तस्कीन के लिए एक इंसान से ही अपनी जरूरत पूरी करे, और दूसरी ये कि अपनी बीवी से। लेकिन आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया, उसने कभी जानवरों को इस्तेमाल किया, कभी एक इंसान अपनी जेंडर के इंसान से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, जबकि यहां पे कहा गया वह जाला लकुम मिन अजवाजिकुम बनीना व हफदा, तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते दिए। इसका मतलब है कि यहां पे वो बीवी मुराद है, वो जोड़ा मुराद है जिससे औलाद पैदा होती है। जब एक जैसे औरत औरत का जोड़ा नहीं बन सकता क्योंकि उससे औलाद नहीं हो सकती, मर्द मर्द का जोड़ा नहीं बन सकता उससे औलाद नहीं हो सकती, इसका मतलब जोड़ा सिर्फ मर्द और औरत का बन सकता है क्योंकि उससे आगे बेटे हैं और पोते हैं। मजा आ गई। यहां पे नफी हो गई कुरान के अंदर कि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जिसको ये लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो नेचुरल है, नहीं ये तो साबित है, और उसको जबरदस्ती से कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देख लें अजवाज किसको कहा गया, अगर जोड़ा बन सकता होता मर्द और मर्द का तो फिर उससे कैसे फिर बेटे और आगे औलाद पैदा होती। और यहाँ पे बनीन का लफ्ज़ है, बनीन वैसे बेटे के लिए कहते हैं लेकिन बनाई अपनी इमारत को कहते हैं, बुनियान भी आपने इमारत के लिए पढ़ा होगा, बुनियादों के लिए। तो औलाद चाहे लड़का हो या लड़की वो सब ही इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, सारी औलाद के लिए। इंसानों को कहा जा रहा है आपको बीवियां तुम्हारे अपने ही जिन्स में से दी गई ताकि तुम उनसे शादी करो, उनसे रिश्ता ताल्लुक कायम करो और फिर उससे औलाद अल्लाह ताला ने अता फरमाई। जब आप देख लें क्या उन गैर फितरी अननेचुरल रिलेशनशिप से कभी औलाद होती है, इसका मतलब वो नहीं है जौज, वो जोड़ा बन ही नहीं सकते। और आजकल इसका बहुत चूंकि शोर मचा हुआ है, ढंडोरा है कि भाई ये भी जोड़े हैं और इनको भी जोड़ा समझा जाए और इनकी भी शादियां हो रही हैं और इनके भी बाकायदा उनको लीगलाइज करने के लिए पहले जहनों को तैयार किया जाता है, उसके बाद ही लॉज भी बनते हैं। तो पहले जहनों में ये बात लाई जाती है कि इट्स ओके, ये भी ठीक है। कहां से कुरान से साबित करेंगे कि ये भी ठीक है? मर्दों को जन्नत में भी हूरें दी गई हैं, मर्दों जैसे मर्द नहीं दिए गए। तो ये अगर ऐसी ही अच्छी चीज होती या ऐसी नेचुरल चीज होती तो फिर इस तरह से ही कर दिया जाता कि जो मर्द है वो मर्द के साथ ही जोड़ा बना ले। तो अब यहां पे कहा गया वजाला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा, तुम्हें उनसे औलाद दी गई इन बीवियों से। अब देखें यहां पे औलाद की निस्बत उनकी माओं की तरफ की गई, क्यों? इसलिए कि ठीक है आदमी का भी हिस्सा है औलाद के पैदा करने में, उसका स्पर्म है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है ना, उसके अंदर मेजर रोल माँ का होता है। उसके पेट में पल रहा है बच्चा, उसके खून से, उसकी ताकत से, जो सारी न्यूट्रिशन है वो सब माँ का ही रोल है उसमें। अगर बाप का हिस्सा ही हो सिर्फ तो ये सिस्टम चल नहीं सकता, वहीं रुक जाएगा, फिर वो इंसान नहीं बन सकेगा, कोई काबिले जिक्र चीज ही नहीं है वो, ना उसको कोई औलाद कहता है, वो तो हकीर पानी का कतरा है। तो इस सारे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा मां का है। तो ये नहीं फरमाया, देखे नोट करें यहां पे, ये नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां बना दी और औलादे बना दी, इससे ये भी तो कहा जा सकता था, बीवियां बनाई और औलादे बनाई, दोनों ही बनाई ना, नहीं तुम्हारी बीवियों में से तुम्हें औलादे दी। अरे एक बीवी की अहमियत पता चलती, एक औरत जो किसी आदमी के घर पे जाती है उसका मकाम पता चलता है कि अल्लाह ने इसके थ्रू तुम्हें औलाद की जैसी नेमत दी है, इसको जरिया बनाया। वो लोग जो अब बीवियों को बहुत ही नीचा और कमतर देखते हैं, ये तो पाँव की जूती है ऐसी, इस तरह की तो कोई चीज भी नहीं यहाँ पे कुरान में आई। या जो खवातीन सोचती है नहीं जी इस्लाम ने तो हमें कोई हकूक ही नहीं दिए, कोई ऐसी नहीं बात की, पता नहीं हमें कितना नीचा कर दिया। मर्दों को भी कहा गया देखो तुम्हारी नस्ल अगर चलती है ना तो इसके जरिए चलती है, ये तुम्हें पैदा करके देती है औलाद। तो इस नेमत को याद दिलाया गया कि बीवी भी एक नेमत है, क्योंकि इस नेमत के जरिए तुम औलाद पाते हो। एक तरफ सुकून का जरिया और एक तरफ औलाद का देने का जरिया। और ये भी समझ आ गई, जोड़ा ऑलवेज ऑपोजिट जेंडर का होगा, इसलिए कि तभी औलाद हो सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें यहां से समझ आ गई हैं, सेम जेंडर जोड़ा नहीं बन सकते। ये तीसरी चीज हमें यहाँ पे माँ की भी अहमियत का पता चला कि औलाद, वैसे तो वो कहते हैं औलाद तो बाप की जी होती है, माँ की तो कुछ ऐसे कुछ है ही नहीं। नहीं, माँ का बताया गया कि उससे ही औलाद है, उसी से औलाद है। पैरों तले जन्नत माँ की है, बाप के नहीं है। तो ये नहीं कोई कह सकते बस मेरी ही है, तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं, क्योंकि कुरान औलाद को माओ की तरफ मंसूख करता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि बाप की तरफ मंसूख किया जाए, तुम्हारे लिए है बस तुम्हारे। कुरान कहता है तुम्हारे लिए बीवी बनाई, दोनों शामिल हो, मगर औलादें तुम्हारी बीवियों से आई, मिन अज़वाजिकुम। और हफ़दा, इसको भी जरा गौर कर लेते हैं, इसमें औलाद की औलाद भी आ जाती है, पोते पोतियां सारे नवासी नवासी सब। मगर अगर इसके रूट को देखें ना, हफ़दा जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इसके अंदर मतलब है फुर्ती दिखाना, तेजी दिखाना। हाफिद उसको कहते हैं, खिदमत गुजार को, है ना, एक दुआ पढ़ते हैं, वह इलई का नसा व नाफिदु व नरजू रहमत का नक्शा आजाबा का, ये वाला पढ़ते हैं ना, तो नाफिदु जो हम कहते हैं तो क्या मतलब, वह इलई का नसा, हम तेरी तरफ दौड़ हूप करते हैं, तेरी इबादत के लिए हम फुर्तियां दिखाते हैं, सरगर्मियां दिखाते हैं। तो इमाम तबरी ने इसको कहा कि हफदा से मतलब है खिदमत गुजार, कि अल्लाह तला ने तुम्हारे लिए खिदमत गुजार बनाए, और जो आगे औलाद की औलाद भी है वो भी खिदमत करती है, इसमें वो भी शामिल है, और इसमें गुलाम नौकर चाकर भी शामिल है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके अंदर बातें आ गई, और जो भी मुआविनीन जो भी हेल्पर्स हैं उसकी जिंदगी का निजाम आगे बढ़ाने के लिए, वो सब इसके अंदर शामिल हो गए। और बाज ने कहा कि ये बनीन ही की सिफत है, कि बनीन की आगे सिफत बयान की गई वाह के साथ, कि बनीन है जो औलाद है वही हफादा है, यानी वही तुम्हारी खिदमत गुजार है, कि औलाद खिदमत करती है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने बीवियां दी जिससे तुम्हारी औलाद हुई जो तुम्हारी खिदमतें करने वाली। इसका मतलब औलाद का काम है कि वो अपने वालदैन की खिदमत करे। और बाज ने कहा, बाज तफसीरों में ये भी है कि हफदा से मतलब है दामाद और बहुएं, और खास तौर पे दामादों की बात की गई, यानी दामाद भी काम में मुआविन होते हैं, क्योंकि ये अब बच्चों के आगे स्पाउसेस हो गए ना बेटियों के, और इसी तरह बहुएं भी। तो इमाम कुर्तुबी ने कि ये लिखा है कि बच्चों की औलादें और बेटियों के खामिद और ये सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और इन सब का ये है कि वो भी खिदमत करें। अलबत्ता इब्ने अब्बास ने चूंकि इसे पोते और पोतियां मुराद ली हैं, तो इसलिए ज्यादातर आप तर्जुमों में पोते पोतियां देखेंगे, लेकिन असल हफदा का मतलब नहीं है पोते पोते, इससे मुराद है, लोग भी माना तो वही है, मैंने आपको जैसे बता दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी है ना तुम्हें आगे से आगे। देखें जब इंसान की औलाद होती है, वो औलाद बड़ी हो जाती है, तो फिर अब ये फिक्र पड़ जाती है अब इनके भी बच्चे हो जाए, अब उनके लिए दुआएं इंसान करने लगता है कि अल्लाह इनको भी औलाद की नेमत दे दे। लेकिन अल्लाह ताला ये नेमतें जब देता जाता है, आगे इंसान की नस्ल बढ़ती है। अब देखिए दो थे, उन्होंने जिंदगी का सफर शुरू किया, फिर उनसे उनके मसलन चार पांच बच्चे हुए, फिर आगे उनसे आगे नस्ल हुई, तो वो कैसा बड़ा सा खानदान बन जाता है। और
कभी आप देखें कि एक दादा दादी या नाना नानी के इर्द गिर्द सारे जमा हुए हो, तो वो दो कहाँ, वो दो और कहाँ वो 30 40 बन जाते हैं। तो इंसान उनको देख के खुश होता है, उसको उनको देख के तमन्नाई आती है, तो ये भी नेमते हैं तुम्हारे लिए ना, लिहाजा इनको नेमते गर्दाने। इसलिए अल्लाह ताला ये सारी नेमतें याद दिला के इंसान को बता रहा है, देखो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतों के अंबार लगाए, कैसी कैसी नेमतें तुम्हारे इर्द गिर्द हैं जो तुम्हारा दिल खुश कर देती हैं। फिर अगर खिदमत गुजार हैं तो वो भी एक माना है, तो खिदमतें कर रहे हैं, और बेटियां हैं अगर हाफदा से मुरादबाज ने बेटियां भी ली कि बेटे भी और बेटियां भी दी, और बेटियां भी चूंकि मतलब इसका खिदमत गुजारी है, तो बेटियों में बहुत ज्यादा खिदमत गुजारी होती है। तो ये भाग भाग के अपने दादा नानी इनके लिए भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करते हैं। वरजा का कुमिनत, तो ये बात, और इसमें रिस्क दिया तुमको पाकीजा, उसने रिस्क दिया तुमको पाकीजा, यानी अल्लाह ताला ने देखो तुम्हारे लिए रिस्क का भी इंतजाम किया जो पाकीजा रिस्क है। इसका मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क में बहुत सारी चीजें शामिल है, ये अकल समझ है ना, ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, जो आपको अकल है, जो आपको बात करने की सलाहियत है, देखने सुनने की सलाहियत है, सारे रिस्क है जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया, माल दौलत के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब रिस्क है। पाकीजा चीजों में से तुम्हें रिस्क दिया, खाने को पाकीजा चीजें दी, सुभान अल्लाह। इंसान कैसे इन नेमतों से अपनी नजर चुरा सकता है, कैसे भूल सकता है नेमत देने वाले को, ऐसे लगता नहीं है आपको, जस्ट अपने आप को ना इन आयात के अंदर गुम करके देखें और सोचें कि ऐसे आपको लगता नहीं जैसे आप नेमतों के अंदर घिरे हुए हैं, आपके हर तरफ उस रब की दीवी नेमते ही नेमते हैं, नेमते ही नेमते हैं, क्या फिर भी इन नेमतों को देख के वो याद नहीं आता कभी भी। बच्चों के साथ खुश हैं, उनके साथ मजा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और एक हैप्पी फैमिली हुई है, टुगेदर है, हंस खेल रहे हैं, कभी भी नहीं याद आता कि औलाद मुझे किसने दी और इस औलाद से आगे औलाद दे दी मुझे, कि मुझे एक से कितने दो थे हम और उससे कहाँ से कहाँ तक बना दिया, कहाँ से कहाँ तक फैला दिया, कोई किसी मुल्क में बैठा है, कोई किसी में बैठा है, और देखो वो कहाँ से सफर शुरू हुआ और कितने सारे बन गए, तुम्हें रिस्क दिया, तो क्या अल्लाह फिर भी नहीं याद आया, क्या इन्हीं चीजों में खो गए, कभी सोचा नहीं, कभी तो सोचने का वक्त आना चाहिए, कभी तो दिल में ख्याल आना चाहिए, ये कभी भी नहीं आता। अफा बिल बातिली युमिनून, क्या फिर बातिल पे तो तुम ईमान रखते हो, वह भी नियामत लाई हूँ यकफुरून, और वो अल्लाह की नियमतों का इनकार करते, बातिल के ऊपर ईमान और अल्लाह की नियमतों से का इनकार, मतलब क्या है कि यानी शैतान के ऊपर ईमान, शैतान की बातें सुनना, शैतान की इताअत करना, उसके फरमा बरदारी में लगना और अल्लाह ताला की नेमत उसका इनकार कर देना, यानी उसको किसी और के नाम मंसूब कर लेना, यहां से मिला वहां से मिला, शुक्र करने की बात आए तो औरों की तरफ बढ़ना। आप भी देखें औलाद के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, जिनके पास औलाद नहीं होती कोई दरगाह नहीं छोड़ते, फिर कभी सितारों की पूजा करने लगते हैं, कभी बुतों की पूजा करने लगते हैं, कभी औलिया अल्लाह की पूजा करने लगते हैं, कभी किसी मिजार, कभी किसी मिजार, कभी कहीं धागा, कभी कहीं चादर, कभी कहीं देगे, क्या हो गया, बातिल पे तुम्हारा यकीन है और अल्लाह ताला की नेमत का इनकार, फिर जब मिल जाती है तो फिर शुक्र भी वहीं जा जाके अदा करते हैं। कुफारे मक्का तो करते ही थे ऐसा, आज मुसलमानों का क्या हाल है, ईमान अल्लाह पर और शुक्र किसी और का, ये अल्लाह की नेमतों से कुफरान है।
इसीलिए जब आपको किसी इंसान से भी कोई खैर मिलती है ना, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर हाँ इंसान का भी करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जरूर करें, ये नहीं आपको कोई कहता कि आप कभी किसी का शुक्रिया ही नहीं अदा करें, लेकिन लोगों में ऐसे ना खो जाए कि यही भूल जाए कि कोई और है जात जिसने इसको जरिया बनाया। वो जात इसको जरिया ना बनाते तो ये मेरे कोई काम नहीं आ सकता था। उसको ना भूले, हर नेमत अता करने वाला वो रब ही है। उसको छोड़कर ये समझे कि मुझे तो इसने दिया, क्योंकि आपको वो जाहिर में नजर आता है, और रब को भूल जाए, ये ना शुक्रिया। और हर नेमत पे हमारे लिए वाजिब है कि हम शुक्र अदा करें नेमत को देने वाले का, हर नेमत। और इतनी नेमते हैं, इतनी नेमते हम तो गिन भी नहीं सकते, कैसे शुक्र अदा करें। तभी तो अल्लाह ताला ने वो हमें कलिमा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह का। ये अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हम्द सारी तारीफ जिसमें शुक्र के भी जज्बात है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, और तमाम की तमाम तारीफ। तो इसलिए हम्द किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। इसलिए किसी को ना कहें ये मेरे माई बाप हैं, ये अता करने वाले, आप ही सब कुछ हैं, उसी की तारीफें उसी के गुण गाए और अल्लाह को भूल गए। सबब का ठीक है शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुसब्बिब अला सबाब अल्लाह ही। और याबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लहुम रिज़्कुम मिनस समावाति वल अर्ज़ शैय़अ। वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, जो नहीं मालिक किसी चीज के भी रिस्क में से, आसमानों में और जमीन में किसी चीज के भी मालिक नहीं है। वला यस्ततीऊन, और वो ताकत ही नहीं रखते, वो इस्तेआत ही नहीं रखते, उनसे जाके मांगते, उनकी इबादत करते। इबादत क्या चीज होती है पहले तो मिन दूनिल्लाह की बताएं। अक्सर तफसीरों में आपको नजर आएगा जो बाद में लिखी हुई है लोगों ने, कि मिन दूनिल्लाह में वो कहते हैं नहीं जी बस बुत मुराद है और कोई नहीं। हाँ मुझे बताएं कैसे, यहाँ पे बुतों की तो बात नहीं हुई, बुतों के लिए भी अलग वर्ड है, मिन दूनिल्लाह में कौन आता है। आप इसकी एक, सिर्फ एक मैं आपको एग्जाम्पल या एक इसकी दलील दे सकती हूँ कि मिन दूनिल्लाह में हर कोई आता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह माईदा के एंड में जहाँ पे ईसा अलैहि सलाम पे बात की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा अंता कुलता लिन्नासि इत्तखजूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने कहा था लोगों को मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा, मिन दूनिल्लाह मुझे और मेरी माँ को रब बना लो। मिन दूनिल्लाह में किसको शामिल किया गया, ईसा अलैहि सलाम और उनकी माँ। इसका मतलब मिन दूनिल्लाह में सब शामिल है, जो भी अल्लाह के सिवाय वो मिन दूनिल्लाह है, चाहे वो कोई बुत है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई पैगंबर है, कोई औलिया अल्लाह है, फरिश्ते हैं, सितारे हैं, जो भी है वो मिन दूनिल्लाह है, अल्लाह की जात के सिवा, अल्लाह की जात के अलावा जो कोई भी है, चाहे नबी अलैहि सलातो वसलाम है, वो भी अल्लाह ताला का हिस्सा नहीं है, वो मखलूक है, और अल्लाह खालिक है, और अल्लाह एक ही है, अल्लाह दो नहीं है। समझ आई बात? तो मिन दूनिल्लाह में तो सबको ही आ जाता है, सिर्फ बुत थोड़ी है, हर कोई मिन दूनिल्लाह है। मिन दूनिल्लाह का बताया कि किसी मिन दूनिल्लाह के अंदर कोई ताकत नहीं है, किसी मिन दूनिल्लाह की कोई मिल्कियत नहीं है आसमान और जमीन में, कोई नहीं है जिसको हम सोचें कि इसके पास मिल्कियत है रिस्क की, इसके पास मिल्कियत है शिफा की, जी इसके दर पे चले जाओ आप ठीक हो जाओ, इसके दर पे चले जाओ आपको औलाद मिल जाएगी, इसके दर पे चले जाओ आपके काम बन जाएंगे, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, फलां के पास जाओ, वो तो ला यमलिकु लहुम रिस्क, उनके पास कोई मिल्कियत है ही नहीं रिस्क की, वो मालिक है ही नहीं रिस्क के, आपको कैसे दे सकते हैं। रिस्क में क्या क्या शामिल, हर चीज रिस्क है, तो किसी चीज की भी उनकी मिल्कियत नहीं है, क्यों उनसे मांगते हो, क्यों इनकी इबादत करते हो। और इबादत में दो चीजें, इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई आजजी, जिल्लत और पस्ती के साथ। तो क्यों उनसे इंतहाई मोहब्बत और क्यों उनके सामने जिल्लत और आजजी, क्यों उनके सामने झुकते हैं, देखते हैं आप सजदे कर रहे होते हैं, सजदे कर रहे होते हैं कब्रों के आगे जाके। तो ये तो इबादत है, सजदा इबादत है, दुआ इबादत है, बल्कि मुखल इबादत है, दुआ तो इबादत का भी मांस है। फिर उनको सजदे करना, उनके आगे दुआएं मांगना,
उनको समझना कि ये इनके हाथ में ताकत है, ये मालिक है, ये सब शिर्क की किस्में। अल्लाह ताला पूछती हैं कि वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा की इबादत करते हैं जिनके पास कोई मिल्कियत है ही नहीं, ना आसमानों में किसी चीज की मिल्कियत है ना जमीन में किसी चीज की मिल्कियत है, तो कोई ताकत ही नहीं। बेताकत से जाके मांग रहे हो। और कितनी जगह कुरान में हमें बताया गया कि सारी मिल्कियत अल्लाह ही की है, मालिक वो है, इख्तियार उसका है। और ये तो इतने बेइख्तियार हैं कि अगर मक्खी भी इनसे कुछ ले जाए तो ये उससे भी कुछ छीन के नहीं ला सकते। मुर्दा तो मुर्दा है, बुत तो बुत है, जिंदा के सामने से भी मक्खी कुछ ले जाए वो भी नहीं ला सकते, तो फिर कैसे कोई खुदा हो सकता है, कैसे कोई खुदा का शरीक हो सकता है, कैसे कोई किसी के काम बनाने की ताकत रख सकता है, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो लक्ष्मी देवी है, चाहे वो गौस है, चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो कोई दाता है कहते हैं, चाहे वो कोई कलंदर है, कोई भी है। अब तौहीद और कैसे सिखाई जाए। अल्लाह ताला हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमा दे कि यानी बंदों के हाथों में जो उसकी मखलूक है उसके हाथों में इतना इख्तियार समझते, अल्लाह का हक इनको दे देते, वाकई इंसान ने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानी। जैसे उसका हक है इबादत करने का वैसे कभी नहीं कर सकता कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस में आती ना आपकी दुआ कि अल्लाह मैं तेरी सना जैसे तेरा हक है मैं बयान ही नहीं कर सकता, या अल्लाह मैं नहीं बयान कर सकता। और वो जो मशहूर हदीस है कि फरिश्तों की कुछ अकसाम ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के आगे सजदे में पड़े हुए हैं, जब तक जब से वो पैदा हुए ना वो वैसे ही हैं, उन्होंने कभी सर नहीं उठाया। अल्लाह के कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में ही हैं, जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया रुकू में सर रखे हुए हैं और कभी नहीं उठाया, कोई कयाम में खड़े हुए हैं कोई कुछ। और कयामत जब आएगी तो तब वो कहेंगे, हालांकि वो सारा वक्त इसी हालत में रहे जब से पैदा हुए, तो कयामत आएगी तो तब कहेंगे ए बारी ताला तू पाक है, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। जबकि ना वो खाते हैं ना पीते हैं ना कोई और उनको काम है, उनकी कोई हाजते नहीं है, बस वो उसी के अंदर है, ना बातें करते हैं इधर उधर एक दूसरे के साथ ना कुछ, वो बस उसी पोजीशन के अंदर, तब भी वो कहते हैं। और इंसान कितना जुल्म करता है जब वो अल्लाह के साथ शरीक कर देता है। जो एक्टिविटी भी इबादत कहलाती है ना वो किसी और के लिए नहीं करनी, जो एक्टिविटी भी जो एहसास इबादत कहलाता है, जो बात इबादत कहलाती है, जैसे एहसास है मोहब्बत का एहसास है कि शदीद मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वो इबादत है, तो फिर अल्लाह का हक दूसरों को कैसे दे सकते हैं, कैसे कोई और ऊपर हो सकता है, चाहे वो कोई औलाद ही क्यों ना। पर इबादत पूरी जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेती है। इबादत बिछ जाने का नाम, झुक जाने का नाम है, किसी को अपनी यादों में बसा लेने का नाम है। हम कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते, हम वैसे नहीं करते जैसे करनी चाहिए। जिंदगी के हर मामले में हर गोशे में अपनी आजादी छोड़ के, अपनी अथॉरिटी छोड़ के, अपनी पसंद और नापसंद को छोड़ के अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाना ये इबादत है। जिंदगी में अपने आप को सरेंडर कर देना इबादत है, हथियार डाल देना कि मेरे पास कुछ नहीं इख्तियार, मैं इख्तियार होते हुए अपने आप को बेइख्तियार कर लेना है, अल्लाह मेरे पास इख्तियार है कि मैं ये गुनाह करूं, तूने मुझे इख्तियार दिया लेकिन मैं अपने आप को बेइख्तियार करती हूँ जैसे मेरे पास इख्तियार ही नहीं, अपने हाथ पैर तोड़ लेना कि मैं गुनाह के आगे अपने हाथ पैर तोड़ लेती हूँ, मैं नहीं ये गुनाह कर सकती, ये इबादत है। तो ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो वो मालिक है, कोई और मालिक नहीं, वो ओनर है हर चीज का, ओनर ओनर समझते हैं ना, कोई और ओनर है ही नहीं, और किसी और की अथॉरिटी नहीं, वो अथॉरिटी नहीं रखते, अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के पास है, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, जिसको चाहे दे जिसको चाहे ना दे। अब क्या
इसके अंदर कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो समझ नहीं आ रही हो? बताएं, कौन सी ऐसी बात है? फिर भी अगर हमारे अकीदे ही सही नहीं है, क्यों? इसलिए कि अकीदा कुरान से सही होता है, और कुरान की तरह हमने आना नहीं, कुरान से जुड़ना नहीं, कुरान को पढ़ना ही नहीं। इसीलिए तो आज जहालत इतनी है, इसीलिए तो इतनी तकलीफ होती है ना मुझे, जब मुझे कोई ऐसे वीडियो भेजता है जिसके अंदर कोई किसी इंसान एक खड़ा हुआ है और वो उसके आगे झुक रहे हैं और उसके आगे सजदे कर रहे हैं, और फिर उसको हाल चढ़ जाता है, और पता नहीं वो फिर क्या, पता नहीं वो प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई वही आ गई, फिर वो गोल घूमना शुरू हो जाता है, फिर उसको लोग चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं, फिर कोई बैठा हुआ वो ऐसी ऐसी बातें करता है और ऐसी ऐसी वो कर रहा है, और लोग दीवाने हुए जा रहे हैं उसकी बातों पर, वो पूरी शिर्क की, यानी शिर्क में डूबी हुई सारी बातें, सरीहन शिर्क। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन्नी ला अमलिकु लि नफ्सी नफा मुला दर, आया नबी आप कह दें इनसे, मैं अपनी जान के पर ना किसी नफा का ना नुकसान का कोई इख्तियार ही नहीं रखता, और किससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती, फिर भी नहीं समझ आता। आपसे जरम से बढ़ के भी कोई और हस्ती है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कुरान में फरमा दे, ए नबी आप कह दें कि मैं नहीं इख्तियार रखता, अगर मैं इख्तियार रखता होता तो मैं अपने लिए बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता। आपसे जरम की जिंदगी में कितनी तकलीफें, इख्तियार रखते होते तो उन तकलीफों को ना आने देते, नहीं इख्तियार था, समझ नहीं आती ये बात। लेकिन उनको अपने लिए तो इख्तियार नहीं था, आप लोगों के लिए इख्तियार है कि वो आपकी हर बिगड़ी बना दे, आपकी हर मुश्किल आसान कर दे, फिर खुदा का काम ही क्या रह जाता, फिर तो ये बुत बनाए हैं, ये खुदा है, फिर ये काम तो अल्लाह के हाथ में, ये काम किसी और के हाथ में, सोच लिए इसको, इसके ऊपर ईमान रख लिया कि ये भी कुछ कर सकते हैं, तो और शिर्क क्या है बताएं फिर? पर वो हम मुसलमान भी बने रहते हैं, साथ शिर्क का भी कारोबार जारी है। आपके मुल्क में कभी भी इतने अड्डे ना होते शिर्क के, अगर वाकई लोगों ने कुरान को समझ लिया होता। जगह जगह देखें ऐसे लोग बैठे हैं, उनकी भी दुकानें इसीलिए चलती हैं क्योंकि जहालत इतनी ज्यादा है, क्योंकि कुरान का इल्म ही नहीं। इतनी बात को मुझे बताएं, मैं ना भी एक्सप्लेन करूं, कौन सी ऐसी जिसमें चीज है कि जो समझ ना आने वाली बात, इतनी सिंपल बात नहीं समझ आती। अल्लाहु अकबर, फला तदरिबू लिल्लाह अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो, यानी ऐसी मिसालें जैसे अपने लिए करते हो, जैसे कि हमें औलाद चाहिए तो पता नहीं अल्लाह को भी औलाद चाहिए तो उसके लिए भी औलाद बताना शुरू कर, जैसे जी हमें सिफारशी चाहिए होता है कोई काम कराने के लिए, हम किसी बड़े अफसर के पास पहुंचना है, कई लोगों को आपने देखा होगा ये मिसालें देते हैं, लेकिन जी हम बड़े अफसर तक पहुंचना होता है, आखिर तो उसके सेक्रेटरी से मिलना होता है ना, तो उसको खुश करते हैं तो वो बड़े अफसर तक लेकर जाते हैं, आखिर कहीं ऊंची जगह पहुंचना तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, ये मैंने लोगों के मुंह से सुना। तो इसी तरह हम अल्लाह के लिए भी ये सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, ये हमें अल्लाह तक पहुंचाते हैं, तो मुशरिकीन मक्का भी तो यही कहते थे, हम इस काबिल कहाँ है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम तो इनकी कर लेते हैं, तो ये अल्लाह के हमारे आगे खुद ही छुड़वा देंगे अल्लाह के आगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के लिए वो मिसालें ना बयान करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे जैसा थोड़ी है, वो तो लैसा का मिसली शय, और उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, उसकी मिसाल है ही नहीं कोई, तो उसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती, वो यकता है, वो असमद है, वो अहद है, उस जैसा कोई नहीं, तुमने अपने जैसा बना लिया, वो तो समीर और बसीर और अलीम और खबीर है, उस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ, वो जो अफसर बैठा हुआ उसको तो पता ही नहीं कि तुम बाहर खड़े हो, उसको पता ही नहीं तुम्हारा क्या मसला है, इसलिए तुम्हें एक इंसान की जरूरत है, वो भी तुम्हारे जैसा इंसान है, इसलिए वो तो समझ जाती है, अल्लाह को भी तुमने उस अफसर की तरह समझ लिया, उस इंसान की समझ तरह समझ लिया जिसको बाहर की चीज का पता नहीं, वो दीवार के पीछे उसको ये नहीं पता दीवार के आगे क्या है, उसको नहीं पता आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, अल्लाह ताला के तो ऐसी मोहताजी नहीं, अल्लाह ताला तो ऐसा कमजोर नहीं, तुमने अल्लाह को इंसानों के बराबर कर दी। इन अल्लाह यालमू व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है, उसको ना औलाद की जरूरत, ना उसको कोई किसी की मोहताजी, ना उस तक पहुंचने के लिए किसी की जरूरत, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह वो है जिसको ना नींद आती है ना ऊंग आती है, ना वक्त की कैद उसके लिए, ना जगह की, ना कोई जमान और मकान की, किसी जमाने में भी किसी जगह पे भी, उजीब दावत दाइजा दान, मैं जवाब देता हूं, मैं
पुकारने वाले की पुकार का सुनता हूं, उसको जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है, उसके लिए तुम मिसाले बयान करने लग जाते। और गैर अल्लाह की बंदगी के लिए इसको दलील बनाते, देखो हम तो इसलिए इनकी बंदगी करते हैं क्योंकि देखें वो अल्लाह तक पहुंचाते हैं हमें, तो उनकी यानी इबादत करने के लिए ना अल्लाह की मिसालें देते कि भाई नहीं तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी तो हम ये कर रहे हैं।